Good evening, listeners, and welcome to this yet another fresh edition of Market Mantra, the program in which we try to pack all the important economic news of the day. And besides news, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444. 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. To walk you through today's show, your very own anchors, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
गवर्नमेंट सेज रिपोर्ट्स अबाउट पेमेंट हर्डल्स फॉर प्रोक्योरिंग इरानियन क्रूड आर फैक्चुअली इनकरेक्ट. इन द इंडियन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस इंक्रीज लास्ट वीक एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आउटकम ऑफ द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग एंड क्वार्टरली अपडेट्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक.
सरकार ने कहा कि ईरान से कच्चा तेल हासिल करने में भुगतान संबंधी बाधाओं की खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं. भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले हफ्ते सोने और चांदी में चमक और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा वैश्विक घटनाओं, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की बैठक और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर.
And Subodh and Akar, before we go any further in the program, let's once again remind our listeners, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh, I can see before we take up the first big story of the day, our first listener has already lined up. Yes, I can see Vivek ji jud chuke hain hamare saath Uttar Pradesh se. Vivek ji, aapka swagat hai. Sawal poochiye.
Market Mantra team aur expert ko namaskar.
Ji, namaskar.
Main equity class mein monthly SIP ke through 8 years invested hu. Meri age 36 year hai. मेरा जो पीपीएफ अकाउंट है वो मैच्योर हो गया है, जिसके अमाउंट को मंथली एसटीपी के माध्यम से मैं 3 साल 36 किस्तों में इक्विटी क्लास में 70%, डेप्ट में 20% और गोल्ड में 10% निवेश करना चाहता हूँ. मेरा होराइजन 10 से 12 ईयर के लिए है. अच्छा, मेरी जो करंट एसआईपी चल रही है वो फंड है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपोन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एडलवीस मिड कैप और निपोन इंडिया स्मॉल कैप. मेरा प्रश्न है, क्या मुझे जो मेरे करंट फंड है इसी में ही मुझे एसटीपी के द्वारा निवेश करना चाहिए या कोई किसी चेंज की जरूरत है? कृपया गाइड करें.
विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि आप 8 साल से निवेश कर रहे हैं एक डिसिप्लिन तरीके में. तो अब तक जाहिर है आपको एक बहुत ही अच्छा एक आइडिया लग गया होगा कि एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो करने में हमारे को किस तरीके से उसका जो बेनिफिट है वो कंपाउंड होता है. बाकी जो आपने अपने फंड्स बताए, आपका एक मेरे को पूरे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिख रहा है. आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, एक मल्टी कैप फंड भी है, एक रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए आपने एक अलग से एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड का भी चुनाव कर रखा है. तो आप बेशक इन फंड्स में अपना निवेश कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि और निवेश करना है तो आप अपने पोर्टफोलियो में और नए फंड्स बढ़ाएं। इनफैक्ट एक यही कारण होता है कि अक्सर होता है कि लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड्स जुड़ जाते हैं। जब भी कोई नई SIP शुरू करनी होती है या फिर एक कोई जब कहीं से एकमुश्त पैसा आता है, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो उनको लगता है कि अब के इस बार एक नए फंड में करते हैं। तो एक नए फंड में करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पुराने फंड्स है, आपके जो फंड्स है पोर्टफोलियो में, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, ये सब एक SBI कॉन्ट्रा फंड है, ये सब एक अच्छे फंड्स है। आप इन्हीं में अपना निवेश जारी रख सकते हैं, आप इन्हीं में अपना पैसा आगे निवेश भी कर सकते हैं।
जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
नमस्ते मार्केट मंत्री टीम।
नमस्कार
सर, मेरा सवाल पहला ये है कि अभी के परिवेश में इन करंट सिनेरियो मल्टी कैप हैज डन मोर ऑर लेस बेटर देन फ्लेक्सी कैप, अब क्या इट इज बेटर राइट टाइम नाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ फ्लेक्सी कैप फंड बिकॉज दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द फंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो दूसरा सवाल है कि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट रेट्स में या रियल एस्टेट में नहीं है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं वो क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब देखा गया कि इक्विटी मार्केट गिरा, गोल्ड भी गिरा चढ़ा, लेकिन रियल एस्टेट इज परफॉर्मिंग मोर ऑर लेस कंसिस्टेंटली। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज एम आई मिसिंग आउट समथिंग और इज इट ओके टू रिमेन इन मल्टी कैप और दीज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर एनीवे एक्सपोज टू रियलिटी थ्रू रियल एस्टेट कंपनीज, बिल्डिंग कंपनीज। थैंक यू सर।
शंकर जी, जो आपका पहला सवाल था कि क्या अब ज़रूरत है अभी करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए एक मल्टी कैप फंड से फ्लेक्सी कैप में आने की, मैं कहूँगा कि नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो एक मल्टी कैप फंड है उसमें बेशक एक ये मैंडेट ज़रूर होता है कि उनको 25% मिड कैप में लगाना है, 25% स्मॉल कैप में लगाना है, 25% लार्ज कैप में लगाना है, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद वो अपने आप में एक फंड में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। जो एक एडिशनल 25% बचता है वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है, वो कहीं पे भी लार्ज, मिड और स्मॉल में लगा सकता है। और एक मल्टी कैप फंड एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसमें जो मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, उस वजह से वो एक कंपैरेटिवली फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिटर्न हो जाता है। बट मेरी सलाह रहेगी कि केवल अभी थोड़ा सा मार्केट इस तरीके से कि आपको फ्लेक्सी कैप में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, नहीं, जब तक आपके पास एक लॉन्ग होराइजन है और आपको कुछ एंग्जाइटी नहीं हो रही तो आप अपना बेशक मल्टी कैप में बने रहिए। बट हाँ, ऐसे में एक ये ज़रूर चीज़ है कि आपको अपना असेट एलोकेशन चेक कर लेना चाहिए। ऐसे में ज़रूरत है कि आपका जो पूरा का पूरा पैसा हो, पूरी की पूरी पूंजी है, वो केवल और केवल इक्विटी में ना हो, कुछ पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में भी हो। एक आप अपना असेट एलोकेशन 70-30 का एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं और उसमें अपना आप रिबैलेंसिंग के थ्रू उसको अपना इस्तेमाल कर सकते हैं।
Akar, before we request you to address the query of our next listener, let's take a quick look at the big story of the day. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that India is importing crude oil from more than 40 countries, including Iran, and there are no payment issues in procuring Iranian crude. In a social media post, Mr. Puri dismissed reports and social media claims suggesting that an Iranian crude cargo was diverted to China from Vadinar in India due to payment problems. He termed such reports as factually incorrect. Mr. Puri said bills of lading often mention tentative destinations and cargo shipments may change course during transit due to operational or commercial reasons. Let's now get connected with our next caller from Jaipur. Jitendra ji, swagat hai aapka. Sawal puche.
हाँ सर, हमको लगता है सर लास्ट टाइम आप ही आए थे संडे को, हमको ऐसा लगता है, तो फोकस फंड के बारे में बात हुई थी, इसमें 30 स्टॉक रहता है, तो इसी से रिलेटेड मेरा फिर प्रश्न है। मैंने ऐसा स्टडी किया सभी फंड हाउस का कि रिटर्न तो जैसे ठीक था, इसमें रिटर्न जो है हमारे हिसाब से मतलब 50-60% तक जाना चाहिए था। अगर जैसे मार्केट मंथ में जितने भी गेस्ट आते हैं शनिवार रविवार, अगर उनको फंड मैनेजर बना दिया है तो 30 फंड जो है काफी मतलब वो चुन सकते हैं 500 फंड में से, तो उसका रिटर्न कम से कम 50-60 होना चाहिए। हमको पता नहीं क्यों इसमें कुछ ऐसा लग रहा है।
जितेंद्र जी, जो देखिए, एक फंड का पोर्टफोलियो होता है, रिटर्न्स उस पर निर्भर करते हैं और हर AMC की, हर फंड मैनेजर की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। जरूरी नहीं है कि एक जो स्टॉक है वो हर बार हर एक फंड मैनेजर की कॉल्स एकदम सही जाए. एक अच्छे स्टॉक के अलावा उसमें एक और चीज जो मैटर करती है, वो करती है कि वो लोग उसको किस टाइम पर खरीद रहे हैं, किस टाइम पर बेच रहे हैं. तो देखिए, एक आमतौर पे फोकस्ड फंड थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है. बाकी अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा एक कंजर्वेटिव अप्रोच चाहते हैं तो आप मे बी एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड की तरफ चुनाव कर सकते हैं.
जी, आगरा से राहुल जुड़ गए हैं हमारे साथ. राहुल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हाँ नमस्कार सर. राहुल नहीं सर, विवेक. अभी जो मैंने कॉल की थी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है एक्सपर्ट से. सर मैं जानना चाहता हूँ, जो हमने बताया जो हमारा मैच्योर अमाउंट है उसको सर हम किस क्लास में, जैसे इक्विटी क्लास में 36 एज है, हॉरिजन 10 से 12 ईयर का है, इक्विटी क्लास में 70%, डेप्ट में 20% और गोल्ड में 10% करना चाहते हैं एसटीपी के माध्यम से, क्या ये रेशो सही है? और डेप्ट के लिए हमें बताइए शॉर्ट फंड सही है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन हमें सेलेक्ट करना चाहिए? रिपीट.
विवेक जी देखिए, जो एक आपने एलोकेशन बताया है 70-20-10 का, ये एक एलोकेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल सही है. बाकी देखिए, जो एक बेसिक प्रिंसिपल रहता है वो ये रहता है कि जो भी पैसों की जरूरत आपको 5 साल या उससे ज्यादा समय के बाद के लिए है उसमें ज्यादा से ज्यादा इक्विटी का एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म असेट क्लास है. एक बैलेंस पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में 70% काफी है, वो ठीक है. और जो एक फिक्स्ड इनकम का रोल है, उसका रोल रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आइए. जैसे कि जब शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होती है, मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आता है, तब वो आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देती है. यहाँ पे आप बेशक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. अल्ट्रा शॉर्ट आपने कहा वो थोड़े से और कम समय के लिए होते, बट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स मेरा ये मानना है कि अगर आपका जो एक फिक्स इनकम पोर्शन है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स अच्छे है. बट यहाँ पे एक आपके पास बेनिफिट और है, जैसे कि आपने बताया कुछ पैसा आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड में है जो कि मच्योर होकर आ रहा है. जब आपका पीपीएफ की 15 साल की मच्योरिटी हो जाती है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसको आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे तो बिना किसी और एडिशनल इन्वेस्टमेंट के. वहां पे आपके पास एक सालाना आपको एक एनुअल विड्रॉल की लिमिट भी मिलती है और बीच में आप चाहे तो अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं. जो पैसा आपका फिक्स्ड इनकम का है उसके लिए आप बेशक डेट फंड के जगह अपने पीपीएफ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आज की तारीख में 7.1% गारंटीड गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न मिल रहा है जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री है. मेरी समझ में किसी भी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है. तो आप उसको पीपीएफ को पूरा इग्नोर ना करें, अपने फिक्स्ड इनकम पोर्शन के लिए उसका बेनिफिट उठाने को एक दफा कंसिडर करें. और जी हाँ, जो बचा हुआ आपका 10% है, 5-10% वो आप बेशक गोल्ड में डाल सकते हैं. गोल्ड एक एज अ हेज बहुत अच्छा रहता है मार्केट अनसर्टेनिटी के लिए. आप उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं एसजीबीज, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन अब नए एसजीबीज मार्केट में आ नहीं रहे तो उनमें निवेश करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया. तो उनकी एब्सेंस में आप एक अच्छे गोल्ड ईटीएफ का चुनाव कर सकते हैं.
जी, आइए अगली खबर पे नजर डालें. सरकार देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. सरकार ने नागरिकों से एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए डिजिटल तरीकों का उपयोग करने तथा गैस वितरकों के पास अनावश्यक जाने से बचने को कहा है. तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि फरवरी 2026 से कल तक एलपीजी आपूर्ति 53% से बढ़कर 90% हो गई है. मंत्रालय ने कहा है कि कल 90,000 से अधिक 5 किलोग्राम वाले FTL छोटे सिलेंडरों की बिक्री की गई. ये छोटे सिलेंडर नजदीकी एलपीजी वितरक के पास उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी पहचान पत्र दिखाकर खरीदा जा सकता है. इनके लिए किसी आवासीय पते की आवश्यकता नहीं है. मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2026 से लगभग 3,60,000 पीएनजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं. इनके अलावा 3,90,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है. आकार, आगे बढ़ने से पहले म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ बहुत बुनियादी जानकारियां हमारे कई नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे होते हैं, कई नए निवेशक भी होते हैं, कई छोटे निवेशक हैं और कुछ बहुत सजग निवेशक हैं, जैसे आज एक दो कॉल्स हमारे पास आई थी, तो ऐसे कुछ सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, शायद सरबजीत कुछ बताना चाहें।
जी आकार, यू नो फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिसनर्स यू नो हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द म्यूचुअल फंड, आर म्यूचुअल फंड्स आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्क एपेटाइट शुड अ पर्सन हैव बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स?
सो हियर आई वुड से दैट यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वी हैव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, वी हैव fixed income mutual funds, then we also have international mutual funds, gold mutual funds. So definitely we cannot call them as a safe haven. Definitely they are a safe investment. Your money is secure over there, but we cannot say that your money won't fluctuate in value over there. So they are market linked, and definitely the money would fluctuate. So for a beginner, the best way would be to go either with an aggressive hybrid fund or a normal plain equity index fund. So with the aggressive hybrid fund, the benefit would be that your money would be 70% in equity and 30% in fixed income. The fixed income portion, as I was just saying a few questions back, it will cushion the downfall during market volatility. And on the other hand, index funds are actually good if you have that risk appetite. So when it comes to the risk appetite, it is something like that: when you're investing in equity, you should have a horizon of at least 5 years. And if you're new to mutual funds, I would say start with a very small amount, understand it completely, go with an aggressive hybrid fund or a normal, index fund, and keep a horizon of at least 5 years, and, stay disciplined.
We'll come back to you, Akar. Meanwhile, our next caller from Shimla, Rakesh ji, swagat hai aapka, sawal poochne.
Ji, ji, namaskar. Aur mera ek sawal ye hai ki, मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में लगे, हमारा बैंक दूर है, हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते, क्या पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन के माध्यम से ये हम इसमें निवेश कर सकते, मेरा ये सवाल है।
जी बिल्कुल, अब एम्फी ने पोस्ट ऑफिस के साथ भी पार्टनरशिप कर ली है, इनफैक्ट काफी सारी जगहों पे पोस्ट ऑफिस में जितने भी जो कर्मचारी है, जो पोस्टमैन है, उनको एक ट्रेनिंग भी दी गई है। तो आप बिल्कुल, जो भी आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस है, आप एक दफा वहां पे जाइए और बहुत संभावना है कि वो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने में पूरी सहायता करेंगे।
आकार, वील ऑल्सो लाइक टू हियर फ्रॉम यू, what should investors know about tax implications on mutual funds with special reference to the new income tax act which came into effect from 1st of april this
which
year
which hai kya usme
nahi so for the mutual fund investors there is nothing in the new income tax act so all the earlier rules apply still the capital gains if you are holding an equity mutual fund and sell it after a year the gains would be taxed at 12.5%, but at the same time up to 1.25 lakh of gains, long term capital gains on equity, are tax exempt, and if you sell them within a year the gains are taxed at 20%.
Great
ji, agli khabar pe chalte hain. हम विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज ने अप्रैल के दो शुरुआती कारोबारी दिनों में भारतीय शेयर बाजार से 19,837 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इससे पहले मार्च में उन्होंने 1,17,775 करोड़ रुपए निकाले थे। ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली थी। हालांकि इसी अवधि में उन्होंने भारतीय ऋण बाजारों में 6,304 करोड़ रुपए का निवेश भी किया था। एफपीआई की बिकवाली के पीछे मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की अस्थिरता है। एफपीआईज अभी जोखिम से बचने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। आकार, अभी एफपीआईज तो हमारे यहां से निकल ही रहे हैं, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि बीच बीच में हमारे जो बाजार के जो अच्छे दिन हमें दिखाई देते हैं, जब कुछ सकारात्मक मूवमेंट नजर आ रही है, उसमें मेजर रोल किनका है?
देखिए, अभी पिछले काफी टाइम से जितने भी हमारे जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनकी तरफ से फ्लो बहुत ही स्ट्रांग रहा है, और कई साल पहले तक ये चीज होती थी कि जब भी एफपीआईज पैसे निकालते थे क्योंकि मार्केट उन पर निर्भर होता था तो एक मेजर सेटबैक लगता था, बट अब थैंकफुली थोड़ा अवेयरनेस बढ़ी है और रिटेल इन्वेस्टर्स से काफी पैसे भी आते हैं तो अब वैसे टाइप की दिक्कत नहीं आती है,
अब वो कुशन हो जाता है थोड़ा।
हाँ जी हाँ जी।
सुबोध, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम गाजियाबाद। सुनील जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
थैंक यू, बहुत अच्छा आपने सिस्टम शुरू किया है। मुझे मेरा प्रश्न ये है कि इंटरनेशनल फंड में लगाने का क्या पॉइंट है, अगर हमें करेंसी हेज ही करना है तो हम क्या गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स के अंदर?
सुनील जी, इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब जो होता है एक करेंसी हेज करने के अलावा जो एक मेजर बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि ऐसी काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनीज है जैसे कि आपका एप्पल हो गया या अल्फाबेट हो गया, जो गूगल है हमारा, आपको उन कंपनीज की परफॉर्मेंस में भी पार्ट लेने का मौका मिलता है, उनके प्रॉफिट्स में भी बेनिफिट करने का मौका मिलता है क्योंकि ये कंपनीज अभी इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो इंटरनेशनल फंड्स के माध्यम से हमारे दो से तीन फायदे होते हैं। जो सबसे पहला फायदा होता है वो एक ये होता है कि आपको ऐसे जो बहुत ही बड़ी कंपनीज है एप्पल गूगल, उनके मुनाफे का बेनिफिट उठाने को मिलता है आपको जो कि इंडिया में लिस्टेड नहीं है। सेकंड, आपने खुद ही बोला बिल्कुल, हमारे को एक करेंसी डेप्रिसिएशन से, जैसे जो हम लोग जानते हैं इंडिया रुपी वर्सेस यूएस डॉलर किस तरीके से चलते हैं, तो यहाँ पे एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो एक इन्वेस्टर के लिए हमारे लिए पॉजिटिव चेंज हो जाता है क्योंकि हम जब पैसा लगाते हैं वो तभी वहां पे जाके यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो भले ही हमारे इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा हो बट हमारे को वहां से उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। और जो देखिए एक तीसरा बेनिफिट है वो ये रहता है कि हमारे को एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, आपका जो पूरी की पूरी पूंजी है वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी पे निर्भर नहीं रहती, वहां पे थोड़ा सा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा और डेवलप्ड कंट्रीज का इकोनॉमी का भी एक हिस्सा आ जाता है।
आखिर फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड द न्यूज दैट वी कोलैबोरेट हियर इन द न्यूज रूम, यू नो, नाउडेज वी आर कमिंग अक्रॉस हैवी वर्ड्स, स्टीप लॉसेस, broad-based sell-off across sectors, negative territory, West Asia crisis. In the backdrop of all this, how do you view the growth of the mutual fund industry and what is your advice to the listeners here about their investments in the mutual funds?
So, I would start with the advice for the investors. I would say, I mean, there can be two types of investors. One, those who are already invested in the market, and you know, the other one who were planning to start the investments or, you know, are now thinking whether to start or whether not to. So firstly, I would talk about the ones who are already invested in the market. So this is a time when you have to stay strong, stay disciplined. Do not, you know, think of pressing the panic button and, you know, withdrawing your money and, you know, stopping your SIPs. Just continue with them. These are like the short-term hiccups and over the long-term, you will actually benefit. And these are the times when you will be, you know, buying more with the same amount of money because the NAV of your units would be less. So you'll be getting a higher number of units. At the same time, don't have that intention of, you know, making an opportunistic move or, you know, getting a quick money that, let's say the market is down right now and you, you know, plan to invest X amount of money with the intention of, you know, getting good returns within a year or within 2-3 months. Don't do that. Just stick with your plan, stay disciplined and, keep investing through SIP. At the same time, for the investors who are new to the market, I would say just start your investments, start small, stay disciplined and opt for SIP. I mean, there's never a wrong time to start your long-term investments in equity.
So if I were to very briefly sum up what you said, that if you must check your portfolio, check it less.
Yes.
All right. Moving on to the next big story. On the occasion of National Maritime Day today, Prime Minister Narendra Modi has said that the nation recalls India's maritime heritage and the invaluable contribution of all those associated with this sector. Sharing his message on social media, Mr. Modi said that their dedication strengthens the country's economy, trade and connectivity. Meanwhile, major ports in the country recorded 915 million tons cargo in financial year 2025-26, surpassing the annual target with over 7% growth. In a statement, The Ministry of Ports, Shipping and Waterways said the achievement reaffirms the sector's strong recovery, enhanced efficiency and sustained growth trajectory. It also highlights the impact of transformative reforms and strategic investments undertaken by the government to modernize port infrastructure, enhance logistics efficiency and strengthen India's position as a leading maritime nation.
खबर अगली खबर पर जाने से पहले आकार एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा उठ रहा होता है कि क्या भारत में जो हमारे निवेशक हैं जो आम निवेशक हैं क्या अब भी वो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर ज्यादा गौर करते हैं
देखिए पहले के कंपैरिजन में काफी चेंज आया है अवेयरनेस बढ़ी है और अब इन्वेस्टर्स को पता है कि लॉन्ग टर्म में रहना है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है बट फिर भी देखिए ऐसे बहुत इन्वेस्टर्स है जो थोड़ा सा ना शॉर्ट टर्म की तरफ देखते हैं और मैं कहूंगा कि वो एक इन्वेस्टर ही नहीं वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है हर किसी को ये होता है कि जब वो एक अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और चाहे हम लोग कितना ही मान ले लेकिन कितना ही कह ले जब वो छोटे टाइम में पैसे ऊपर नीचे होते हैं तो लोग बाग ध्यान देते हैं बट एक वही टाइम है जब हमारे को बने रहना है और लंबे समय के हिसाब से निवेश करना है
तो ये पैनिक सेलिंग को कैसे कम किया जाए
देखिए एक तो आप अपना रोज रोज पोर्टफोलियो ना देखें आपको इन्फॉर्म्ड रहना है न्यूज के बारे में अवेयर रहना है लेकिन उसको बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं करना है बस एक 30 मिनट्स अ डे के लिए आप न्यूज देखिए इन्फॉर्म्ड रहिए और अपने पोर्टफोलियो को एकदम डेली बेसिस पे ना चेक करें अपने जो फंड्स है जो स्टॉक्स है उनको 6 महीने में एक दफा बस रिव्यू कर ले 6 महीने में अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो 4-5 महीने में एक दफा बस रिव्यू कर ले
And you know, taking cue from just what you said, you spoke about human psychology. So, Akar, whenever we talk about investment, what immediately comes to our mind is security, is some kind of you know safety net that we are building for ourselves. So, in all said and done, how do you compare returns from mutual funds with traditional options like fixed deposits, gold? How do you compare it with that?
So I would say both of them are not comparable because, you know, the complete asset class is different. So we cannot compare the returns of an equity mutual fund with the traditional bank fixed deposit. But yes, we can compare a debt fund returns with a bank fixed deposit. So definitely mutual fund returns are slightly more than the bank fixed deposit, even if we, you know, get onto the debt funds. But yeah, they cannot be guaranteed because since they are market linked, And there can be very slight volatility.
जी और देखें सोने और चांदी का क्या हाल रहा पिछले हफ्ते भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई पश्चिम एशिया में जारी अनिश्चितताओं के कारण निवेशक अब कीमती धातुओं के सुरक्षित निवेश की शरण में जा रहे हैं एमसीएक्स में मई अनुबंध के लिए चांदी वायदा इस हफ्ते 2% बढ़कर 2,32,495 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई जून अनुबंध के लिए सोना वायदा में सप्ताह के दौरान 1.6% की वृद्धि हुई और यह 1,49,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया इसी हफ्ते में जून वायदा का कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 4% से ज्यादा बढ़कर $4,703 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुआ जबकि मई वायदा की चांदी लगभग 5% बढ़कर $73.17 प्रति ट्रॉय अंस पर पहुंच गई
And let's take a quick peep into how the markets are expected to show up next week. After 6 straight weeks of decline, domestic market sentiment in the week ahead will likely be guided by geopolitical tensions, fourth quarter corporate updates, and the outcome of the RBI's monetary policy meeting. Investors will also be watching trends in commodity prices, foreign investor activity, currency movements, and mutual fund inflow and outflow data. In the United States, markets may react to the employment report along with GDP estimates and ongoing developments in the West Asia conflict now entering its sixth week.
और आकार बस दो सेंटेंस में बताएं कि अगले हफ्ते के बाजार के आउटलुक को देखते हुए कैसा रुख रखें हम
एकदम शांत रहे और बाजार के आउटलुक को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज ना करें
धन्यवाद आकार कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और अच्छी सलाह देने के लिए
थैंक यू
लिसनर्स बिफोर वी रैप अप टुडेज़ शो अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस Government says reports about payment hurdles for procuring Iranian crude are factually incorrect. In the Indian bullion market, gold and silver prices increased last week. And domestic investors to focus on geopolitical developments, outcome of the RBI's monetary policy meeting and quarterly updates for Qs next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।